हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेद और शिवांशा की शादी की रिसेप्शन पार्टी शुरू हो चुकी थी। शिवांशा लहंगे में कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वो ठीक से चल तक नहीं पा रही थी। इसलिए वेद ने आराध्या से कहा कि वो शिवांशा को किसी कमरे में आराम करने के लिए भेज दे। जब उसकी जरूरत होगी तो उसे बुला लिया जाएगा। आराध्या ने वेद के कहे मुताबिक शिवांशा को एक कमरे में छोड़ दिया। राजावत फैमिली भी पार्टी में इनवाइटेड थी और इसी बात का फायदा उठाकर अंकुश वहां आ गया था। जैसे ही उसने शिवांशा को ऊपर कमरे में अकेले देखा, वो उसके पीछे कमरे में चला आया। उसे देखकर शिवांशा बुरी तरह डर गई थी। ऊपर से अंकुश ने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। फुल्ली एयर कंडीशन्ड कमरा होने की वजह से कमरे का टेम्परेचर काफ़ी लो था। उसके बावजूद शिवांशा के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैं आपका काम कर दूंगी, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बोलते हुए शिवांशा ने सचमुच अंकुश के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। तुम डर क्यों रही हो लिटिल गर्ल, यहाँ कोई नहीं आने वाला, चलो अब गिड़गिड़ाना बंद करो और चलो आओ मेरे पास, अंकुश ने वहां लगी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसने शिवांशा को अजीब नजरों से देखते हुए अपनी गोद में बैठने का इशारा किया। शिवांशा ने ना में सिर हिला दिया। वो उन लम्हों को फिर से जीने के बारे में सोच तक नहीं सकती थी जिनके बारे में आज तक उसे बुरे सपने आते थे। डर के मारे वो अपने कदम पीछे लेने लगीं। उसके ऐसा करने पर अंकुश अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने खींचकर शिवांशा को जबरदस्ती अपनी गोद में बिठा लिया। उसने शिवांशा को कसकर अपनी बाहों में भर लिया, जबकि शिवांशा उससे दूर होने के लिए कसम सा रही थी। अपने आप को फिर से इस स्थिति में पाकर शिवांशा की आंखों में आंसू आ गए। बेवजह की कोशिश करना बंद करो लिटिल गर्ल, तुम्हें पता है तुम नहीं बच पाओगी, अंकुश ने हस्की वॉइस में कहा और उसने शिवांशा को कमर से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ कर लिया। अच्छा मुझे बताओ आगे का प्लान क्या है, तुमने सोच लिया है ना कि उसे कैसे मारना है, अंकुश ने पूछा। शिवांशा डर के मारे कांप रही थी क्योंकि अंकुश के हाथ उसकी पीठ पर चल रहे थे। एक तो उसने बैकलेस ब्लाउज पहना था, ऊपर से अंकुश का इस तरह छूना उसे कभी बर्दाश्त नहीं था। शिवांशा के कुछ ना बोलने पर अंकुश ने उसकी कमर को कसकर दबाया और बोला, अपनी औकात मत भूलो शिवांशा ठाकुर, अभी तक मैंने तुम्हें बचाने का सोचा है, वरना मॉम तो यही चाहती है कि तुम फिर से उनका वही फेवरेट खिलौना बन जाओ जो उनका गुस्सा कम करने के काम आता था, बोलो जाना है उनके पास। शिवांशा ने जल्दी से घबराकर उसकी तरफ देखा और ना में सिर हिला दिया। वो रोते हुए बोली, केक कट होने के बाद सब साथ में खाना खाएंगे, उनकी डायबिटीज है तो उनके लिए अलग केक बना है जो शुगर फ्री है, कोई उसे नहीं खाने वाला, मैंने उसमें इसे मिलाने का सोचा है। वेरी गुड, तो मेरी लिटिल गर्ल अब स्मार्ट हो रही है, थोड़ी स्मार्टनेस मेरे साथ भी दिखा दो तो काम आएगा, अंकुश ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। शिवांशा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। अंकुश अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लिया। शिवांशा के हाथों की मुट्ठियां कस गई थी, वो सिसक रही थी। अंकुश उसकी खुशबू को महसूस कर रहा था जबकि उसकी गर्म सांसें शिवांशा के अंदर सिर्फ और सिर्फ घिन का एहसास दिला रही थीं। प्लीज यहां से चले जाइए, कोई आ जाएगा, क्यों बेवजह डर रही हो, मैंने कहा ना कोई नहीं आएगा, चुपचाप बैठी रहो। अंकुश का हाथ उसके ब्लाउज की डोरी को खोलने के लिए बढ़ रहा था तभी उसे बाहर से वेद की आवाज सुनाई दी जो किसी से कॉल पर बात करते हुए आ रहा था। अंकुश ने जल्दी से शिवांशा को खुद से दूर किया और धीमी सख्त आवाज में कहा, तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है, अगर तुमने मेरे प्लान को खराब किया तो आई स्वेयर आज का दिन तुम्हारे भाई की जिंदगी का आखिरी दिन होगा, और मुझे इस तरह डरने वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं, खुद को तैयार कर लेना, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा हर तरह से मेरी बनकर, बेहतर होगा कि कॉम्प्रोमाइज करना सीख लो। इतना कहकर अंकुश सबसे बचकर जल्दी से वहां से निकल गया। वहीं शिवांशा जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही थी, उसके कपड़े और गहने अस्त व्यस्त हो गए थे। शिवांशा को तो इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वेद वही बाहर कमरे से थोड़ा दूर खड़ा था। लगभग एक घंटे बाद नीचे पार्टी हॉल में सभी एक जगह इकट्ठा थे। स्टेज पर वेद और शिवांशा बिल्कुल एक दूसरे के पास खड़े थे। एक घंटे पहले जहां शिवांशा की हालत काफी खराब थी, वहीं अब वो पहले की तरह बिल्कुल अच्छे से तैयार थी। वो वेद के पास हल्का मुस्कुराते हुए खड़ी थी और अब दोनों रिसेप्शन पार्टी के लिए केक कट करने जा रहे थे। सभी लोगों की निगाहें उन पर टिकी हुई थीं। तेजिंदर चौहान अपनी पत्नी लीला चौहान के पास खड़े थे और शिवांशा को घूरते हुए देख रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अंकुश ने तो कहा था कि ये लड़की हमारा काम करने वाली है, लेकिन इसे देखकर लग नहीं रहा कि ये कुछ करेगी। आप लोग बेवजह एक गलत लड़की पर यकीन करके अपना इतना बड़ा प्लान दाव पर लगा रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की किसी काम की नहीं है, ये बस मेरे गुस्सा निकालने के काम आ सकती है। इसे मुझे सौंप दीजिए, मैं इसकी अकल अच्छे से ठिकाने लगा दूंगी, लीला ने शिवांशा को घूरते हुए कहा। उनके पास में अंकुश और गीतिका भी खड़े थे। गीतिका ने अंकुश से धीमी आवाज में पूछा, क्या सच में ये लड़की हमारा काम कर देगी? हम लोग फंस तो नहीं जाएंगे? वैसे तो फंसने का कोई चांस नहीं है, लेकिन इस तरह भीड़ में खड़े होकर तुम लोग बातें करते रहोगे तो जरूर फंस जाएंगे। चुपचाप खड़ी रहो और नॉर्मल रिएक्ट करो। मुझे तो केक कटिंग होने का इंतजार है। चौहान फैमिली शिवांशा और वेद के इर्द गिर्द ही खड़ी थी। उन्होंने साथ में केक कट किया। जैसा कि शिवांशा ने बताया था, एक बड़े केक के पास एक छोटा केक भी रखा था, जो स्पेशली वेद के लिए मंगवाया गया था। शिवांशा ने वेद को उस वक्त वही केक खिलाया था। अंकुश ने शिवांशा की तरफ देखकर इशारा किया तो उसने पलकें झुका दीं। मतलब साफ था कि उस केक में शिवांशा ने दवाई मिला दी थी, बस देर थी तो उसका असर दिखाने की। अंकुश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट उभर आई। उसने गीतिका की तरफ देखकर कहा, मुबारक हो, हमारा काम हो गया है, बस अब हमें नेक्स्ट प्लान पर चलना होगा। कुछ भी करके शिवांशा को यहाँ से सेफली बाहर निकालना होगा। इतना कहकर अंकुश वहाँ से जाने को हुआ, लेकिन गीतिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे आंखें दिखाते हुए बोली, क्या जरूरत है उसे यहाँ से बाहर निकालने की? वैसे भी इल्ज़ाम उसी पर आएगा। अच्छा है ना कि किसी का हमारे ऊपर शक नहीं जाएगा। अंकुश ने उसका हाथ झटका और हल्के गुस्से में बोला, तुम्हारी बातों में आकर मुझे कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है। ये लड़की मेरे बहुत काम आ सकती है। खबरदार, जो तुमने इसके बारे में मम्मी या पापा से कुछ कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गीतिका को धमकाने के बाद अंकुश वहां से शिवांशा को निकालने की तैयारी में लग गया। वहीं केक खाने के बाद वेद को थोड़ा अनईजी सा फील हो रहा था। गीतिका की नज़रें वेद पर टिकी थीं। वो उसके भाव भाव को देखकर समझ रही थी कि ज़रूर शिवांशा का दिया हुआ जहर असर दिखा रहा है। गीतिका के अलावा नव्यांशी ने भी जब वेद की तरफ देखा तो वो अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसने उसके पास जाकर कहा, भाई आपको इतनी देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। आपने दवाइयाँ ली? नहीं, मौका नहीं मिला, डिनर करने के बाद ले लूँगा। वेद ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, पहले आप भाभी और हम सबके साथ डिनर करने वाले हैं, उसके बाद ही आगे कुछ होगा। मुझे दिख रहा है टाइम से मेडिसिन ना लेने की वजह से आपको वीकनेस फील हो रही है, नव्यांशी ने सख्त आवाज में कहा।
सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि केक कट होने के बाद शिवांशा और वेद साथ में एक रोमांटिक डांस करेंगे, लेकिन उससे अलग वे साथ में डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ रहे थे। इस बीच अंकुश भी वहां वापस आ गया था। उसने इशारे से शिवांशा को उससे दूर होने को कहा, लेकिन शिवांशा का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। ये उनके प्लान के लिए अच्छा नहीं था। ये बेवकूफ लड़की मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही है? क्या ये फंसना चाहती है? लगता है मुझे ही करना होगा, वरना ये तो मेरा पूरा प्लान बिगाड़ देगी, अंकुश गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला। उन्हें बधाइयां देने के बहाने वो शिवांशा के पीछे जाने को हुआ, लेकिन वेद के गार्ड्स ने उसे आगे जाने से रोक लिया, क्योंकि ये उनका फैमिली टाइम था। पार्टी का सारा अरेंजमेंट फिलहाल वंश और प्रतीक संभाल रहे थे। बाकी फैमिली डाइनिंग एरिया पर मौजूद थी। अक्षत ने एक्साइटेड होकर वेद से कहा, अच्छा भाई, आज तो ट्रेडिशन के हिसाब से आप और भाभी एक ही प्लेट में खाना खाने वाले हैं ना? शिवांशा ने जल्दी से वेद की तरफ देखा, लेकिन तभी नव्यांशी बोली, ये एक नॉर्मल रिसेप्शन पार्टी है, यहाँ रस्मों का नाम लेकर कोई उल्टी सीधी हरकत करने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो कि भाई को किसी के साथ खाना खाना पसंद नहीं है। किसी और में और अपनी पत्नी में फर्क होता है नवीदी, भाई को तो किसी के साथ बेड शेयर करना भी पसंद नहीं है। फिर भी अक्षत अपनी बात पूरी करता उससे पहले आराध्या ने उसे आंख के इशारे से चुप रहने को कहा, क्योंकि वेद उसे सर्द निगाहों से घूर रहा था। अक्षत ने तुरंत अपनी बात सही करते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, आप अकेले खा सकते हो और ये काम तो देवर के साथ भी किया जा सकता है, मैं भाभी के साथ प्लेट शेयर करने वाला हूँ। और मैं भी, आराध्या ने मुस्कुरा कर कहा। आराध्या और अक्षत किसी भी लिहाज से शिवांशा को अकेला महसूस नहीं होने देते थे। वे जानते थे कि वेद और शिवांशा की उम्र में फर्क है, इस वजह से वेद काफी मैच्योर था और इस तरह की सीधी हरकतें करना उसे पसंद नहीं था। शिवांशा का दिल न टूटे ये सोचकर वे दोनों उसके साथ एक प्लेट में खाना खाने लगे। वेद इन सब में कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस चुपचाप बैठा था और धीरे धीरे खाना खा रहा था। अंकुश की नजरें वेद पर टिकी थीं। उसे इंतजार था उस पल का जब जहर पूरी तरह असर दिखाएगा और वेद की आज सबके सामने जान जाने वाली थी। आज मेरा बरसों का सपना पूरा होने जा रहा है। मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर और दुश्मन वीर सिंह चौहान खत्म होने वाला है। लेकिन अपने दूसरे सपने को अधूरा नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा से शिवांशा को अपने पास रखने का सोचता था। उसकी बेवकूफी के चक्कर में मैं उसे फंसने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो शिवांशा, और अब वक्त आ गया है जब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखने वाला हूँ, अंकुश मन ही मन बोला, और उसने रिस्क लेते हुए शिवांशा की तरफ बढ़ने का सोचा। अंकुश अपने कदम शिवांशा की तरफ बढ़ा रहा था कि तभी वेद अपनी जगह से खड़ा हुआ, एक पल के लिए उसके कदम लड़खड़ाए। ये देखकर अंकुश की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में वहां किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दिल धक धक कर रहा है ना, वेद को कुछ हो ना जाए। चलिए आप पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। क्या लगता है, सच में वेद की जान चली गई? अगर ऐसा हुआ तो नव्यांशी और वंश तो शिवांशा को कच्चा चबा जाएंगे।